पता है डॉक्टर जॉन ओसवाल्ड के इस पूरे व्याख्यान में मुझे सबसे दिलचस्प क्या लगा?
क्या?
एक 6 साल का बच्चा, मतलब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा सीढ़ियों पर बैठा है, उसके हाथ में एक पुराना सा कैसेट प्लेयर है।
अच्छा।
और वो पूरे ध्यान से हिब्रू व्याकरण का एक बेहद जटिल लेक्चर सुन रहा है। मतलब एक बच्चा
हिब्रू व्याकरण, 6 साल का बच्चा।
हाँ। और जब उसके पिता ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, ये इंसान बहुत अच्छा बोलता है।
अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी बात है,
है ना। और ये कहानी मुझे इसलिए इतनी पसंद आई क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ती है। हमें अक्सर लगता है कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथ या ये हिब्रू भाषा का विश्लेषण जैसी चीजें बहुत ही नीरस होती हैं, एकदम अकादमिक।
बिल्कुल, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ विद्वानों के लिए है।
सही कहा, लेकिन अगर किसी विषय को उसकी असली गहराई और सही संदर्भ के साथ पेश किया जाए, तो वे एक बच्चे को भी अपनी कहानी में बांध सकता है।
एकदम सही बात है। और वो बच्चा उस जटिलता को नहीं, बल्कि उस इंसान के बोलने के तरीके और उसकी सच्चाई को पकड़ रहा था।
बिल्कुल। तो आज हम इसी विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम डॉक्टर ओसवाल्ड द्वारा यशाया ग्रंथ के अध्याय 56 और 57 पर दिए गए विश्लेषण को समझेंगे।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है।
हाँ।
हमारा मकसद ये समझना है कि इंसान कैसे अनजाने में अपने धर्म को, मतलब सिर्फ एक ट्रांजैक्शन या लेन देन का जरिया बना लेता है, और कैसे एक प्राचीन साहित्यिक संरचना हमें अनुग्रह के असली मायने समझा सकती है।
ये वाकई एक बेहतरीन शुरुआत है, क्योंकि उस बच्चे की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और ज्ञान की कोई उम्र या सीमा नहीं होती।
जब हम यशाया जैसे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो अक्सर लोग इन्हें सिर्फ इतिहास की एक किताब या पुराने नियमों का पुलिंदा मानकर किनारे कर देते हैं
कि भाई ये तो पुराने जमाने की बातें हैं।
बिल्कुल। लेकिन अगर हम उन शब्दों के पीछे छिपे मनोविज्ञान को देखें, तो पता चलता है कि ये ग्रंथ सीधे तौर पर मानवीय स्वभाव की उन कमियों पर प्रहार कर रहे हैं जो हजारों साल पहले भी थीं और आज भी हैं।
आज भी हमारे समाज में गहराई तक जड़े जमाए हुए हैं। बिल्कुल।
हाँ, इंसान की फितरत नहीं बदली है।
और इसी मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें पहले इस ग्रंथ की बनावट को समझना होगा, क्योंकि जब मैंने डॉक्टर ओसवाल्ड के नोट्स पढ़ना शुरू किया, तो एक चीज ने मुझे बहुत उलझा दिया था।
अच्छा, कौन सी चीज?
देखिए, अगर कोई यशाया ग्रंथ को शुरुआत से पढ़े, तो अध्याय 1 से लेकर 55 तक एक बहुत ही शानदार कहानी चलती है। मानव जाति की समस्याएं बताई जाती हैं, फिर एक सेवक या मसीहा के आने की बात होती है।
हाँ, एक बहुत ही नाटकीय बिल्डअप होता है।
एकदम। और अध्याय 55 तक आते आते सब कुछ एक बहुत ही ऊंचे, विजयी और सकारात्मक स्वर पर खत्म होता है। ऐसा लगता है जैसे कहानी पूरी हो गई, बुराई हार गई और अच्छाई जीत गई।
एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग जैसी।
हाँ, लेकिन फिर जैसे ही अध्याय 56 शुरू होता है, कहानी अचानक से शब्द के नियमों और रोजमर्रा के व्यवहार पर आ जाती है। मतलब
वो एकदम से गियर बदल लेता है।
हाँ, ये ऐसा लगता है जैसे आप किसी बहुत शानदार फिल्म का क्लाइमैक्स देख रहे हो और अचानक से कोई आपको घर का राशन लाने की लिस्ट थमा दे।
ये तुलना बहुत ही सटीक है।
मतलब ये बहुत ही अजीब और एंटी क्लाइमेटिक लगता है। समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया।
ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, और अगर हम इसे अपने नजरिए से, यानी पश्चिमी या आधुनिक नजरिए से सोचें, तो ये एक बड़ी रुकावट भी लगती है।
क्योंकि हम तो कहानियों को सीधा पढ़ने के आदी हैं ना।
बिल्कुल, हम लोग कहानियों को एक सीधी रेखा में पढ़ते हैं, शुरुआत, फिर मध्य और फिर अंत। लेकिन प्राचीन मध्य पूर्वी साहित्य इस तरह से नहीं लिखा जाता था।
अच्छा, तो उनका तरीका अलग था।
बहुत अलग। डॉक्टर ओसवाल्ड ने यहाँ जिस तकनीक का जिक्र किया है, उसे चियास्म कहा जाता है।
चियास्म?
हाँ, चियास्म। ये कोई साधारण कहानी कहने का तरीका नहीं है, बल्कि विचारों को एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत ढांचे में पिरोने की कला है।
हाँ, मैंने भी इस चियास्म संरचना के बारे में पढ़ा। शुरुआत में मुझे लगा कि ये सिर्फ एक भारी भरकम अकादमी शब्द है।
ज्यादातर लोगों को यही लगता है,
लेकिन जब डॉक्टर ओसवाल्ड ने इसे एक पिरामिड या पहाड़ की तरह समझाया, तो पूरी तस्वीर ही बदल गई।
बिल्कुल, आप इसे एक पहाड़ की चढ़ाई की तरह देख सकते हैं।
मतलब आप एक विचार से शुरू करते हैं, पहाड़ की चोटी तक जाते हैं, और फिर वापस उन्हीं विचारों के जरिए नीचे उतरते हैं।
एकदम सही।
अगर इसे ABCDE की तरह देखें, तो आप A से शुरू करके E तक जाते हैं, और फिर वापसी में D, C, B और वापस A पर आते हैं।
हाँ, और जो E है वो संरचना का केंद्र है।
ये संरचना वाकई चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसमें कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो क्लाइमैक्स है वो अंत में नहीं बल्कि बिल्कुल बीचों बीच होता है।
जो चोटी है, जो सबसे मुख्य बिंदु है, वो अध्याय 61 है।
अध्याय 61
जहाँ मसीहा का जिक्र है।
हाँ,
वहाँ मसीहा दुनिया के लिए सुसमाचार लेकर आता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ता है और बंदियों को आजाद करता है। ये उस पिरामिड का शिखर है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि इस पहाड़ की तलहटी में क्या है,
मतलब शुरुआत और अंत में।
हाँ, इस संरचना के दोनों छोर, यानी शुरुआत का अध्याय 56 और अंत का अध्याय 66, वो किस बारे में बात कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है।
और यहीं पर ये ग्रंथ अपने समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक धमाका करता है।
बिल्कुल करता है,
क्योंकि इसके दोनों छोरों पर, मतलब ए और वापसी वाले ए पर, धर्मी विदेशियों और बाहरी लोगों के स्वागत की बात हो रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं थी उस समय।
बिल्कुल नहीं, ये बहुत क्रांतिकारी विचार था।
अगर मसीहा का आना सिर्फ एक घटना होती तो कहानी वहीं चोटी पर खत्म हो सकती थी। लोग कह सकते थे कि अरे मसीहा आ गया, हमारी मुश्किलें खत्म, अब हम आराम करेंगे।
हाँ, उनका काम तो हो गया।
लेकिन ये चियास्म संरचना साफ तौर पर दिखा रही है कि मसीहा का आना कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि वो एक साधन है।
एक साधन है, सही कहा।
और मंजिल क्या है? मंजिल है दुनिया के सभी राष्ट्रों को, सभी लोगों को एक साथ ईश्वर के घर में लाना।
ये एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष है। ये बताता है कि ईश्वर की योजना कभी भी सिर्फ एक छोटे से समूह या एक खास देश तक सीमित नहीं थी। जब हम ये समझ लेते हैं कि पूरी संरचना का लक्ष्य बाहरी लोगों को अंदर लाना है, तो वे नियम जो अध्याय 56 में अचानक से आ जाते हैं, वे नीरस नहीं लगते।
वो जो राशन की लिस्ट लग रही थी, वो अचानक से मायने रखने लगती है।
बिल्कुल, वे असल में ये बता रहे हैं कि उस नए और खुले हुए समाज का हिस्सा बनने के लिए किस तरह के जीवन की आवश्यकता है।
लेकिन जब हम इस खुले हुए समाज की बात करते हैं, तो यहाँ एक ऐसा विरोधाभास सामने आता है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है।
आप किस विरोधाभास की बात कर रहे हैं?
यशाया 56 में विशेष रूप से विदेशियों और किन्नरों का स्वागत किया गया है।
हाँ, बिल्कुल किया गया है।
ग्रंथ कहता है कि अगर वे सही मार्ग चुनते हैं और नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें समुदाय से अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें मंदिर में एक विशेष स्थान मिलेगा।
एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान।
अब अगर हम पुराने नियमों को याद करें, जैसे व्यवस्था विवरण 23 के नियम, तो वहां इन दोनों समूहों को, मतलब विदेशियों और किन्नरों को, ईश्वर की उपासना से पूरी तरह से और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बाहर रखा गया था।
हाँ, उन्हें साफ तौर पर प्रतिबंधित किया गया था।
तो एक आम पाठक तो यही सोचेगा ना कि ये एक सीधी सीधी गलती है या कोई बड़ा विरोधाभास है। जो लोग कल तक अछूत थे, वे अचानक से मंदिर के सबसे खास मेहमान कैसे बन गए?
ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है, क्योंकि सतही तौर पर देखने पर यह सच में एक विरोधाभास लगता है।
हाँ, कोई भी यही सोचेगा।
लेकिन डॉक्टर ऑसवाल्ड इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। वे कहते हैं कि यह कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि यह मानव जाति के आध्यात्मिक विकास और शिक्षा के अलग अलग चरण हैं।
अलग अलग चरण मतलब समय के साथ विकास?
हाँ, इसे ऐसे समझना चाहिए जैसे प्राचीन काल में समाज एक बहुत ही शुरुआती दौर में था। उस समय के लोगों को आध्यात्मिक शुद्धता या ईश्वर की पवित्रता जैसी अमूर्त चीजों को समझाना बहुत मुश्किल था।
तो इसका मतलब है कि प्राचीन समाजों को गहरी आध्यात्मिक बातें समझाने के लिए पहले कुछ बहुत ही ठोस और नजर आने वाले उदाहरणों की जरूरत थी।
ठीक यही बात है। मान लीजिए, जब कोई किसी छोटे बच्चे को खतरे के बारे में सिखाता है,
हाँ,
तो वह उसे थर्मोडायनेमिक्स के नियम नहीं पढ़ाता। वह बस कहता है आग को मत छूना, हाथ जल जाएगा।
बिल्कुल, बच्चा उतना ही समझ सकता है।
प्राचीन इसराइल में भी ईश्वर को यही करना पड़ा। पवित्रता और पूर्णता को समझाने के लिए शारीरिक पूर्णता को एक दृश्यमान उपकरण के रूप में, मतलब एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया।
अब समझ आ रहा है।
किन्नरों का उदाहरण इसलिए लिया गया क्योंकि उनके शरीर की पूर्णता इंसानी दखलंदाजी की वजह से खत्म हो गई थी।
अच्छा।
उस दौर में मंदिर में प्रवेश के लिए बाहरी और शारीरिक पूर्णता का होना इस बात का प्रतीक था कि ईश्वर की उपस्थिति में कोई भी खंडित या अपूर्ण चीज नहीं जा सकती।
ये एक बहुत ही तार्किक स्पष्टीकरण है। मतलब वो जो शारीरिक पूर्णता का नियम था, वो असल में एक ट्रेनिंग व्हील की तरह था।
एकदम सही शब्द, ट्रेनिंग व्हील।
ताकि लोग पूर्णता के असली अर्थ को समझ सकें। और अब यशाया के समय तक आते आते ऐसा लगता है जैसे वे ट्रेनिंग व्हील्स हटा दिए गए हैं।
बिल्कुल हटा दिए गए।
अब संदेश ये है कि बाहरी शरीर कैसा भी हो, अगर इंसान का दिल सही है, अगर वो आध्यात्मिक रूप से पूर्ण है, तो वही मायने रखता है।
एकदम सही। अब जोर बाहरी दिखावे से हटकर आंतरिक निष्ठा पर आ गया है। जो विदेशी या किन्नर ईश्वर के प्रति समर्पित है, वो उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा पूर्ण है जो भले ही शारीरिक रूप से पूर्ण हो लेकिन जिसका दिल ईश्वर से दूर है।
ये तो बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी उस समय के हिसाब से।
बहुत बड़ी। और इसी संदर्भ में यशाया कहता है कि ईश्वर का मंदिर सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा।
प्रार्थना का घर, ये शब्द भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। डॉक्टर ऑसवाल्ट ने राजा सुलेमान के समय का जो उदाहरण दिया वो मुझे बहुत बहुत प्रासंगिक लगा।
हाँ, वो उद्घाटन वाला प्रसंग।
बिल्कुल। जब सुलेमान ने उस भव्य मंदिर का निर्माण पूरा किया था तो वहाँ हजारों जानवरों की बलियां चढ़ाई गई थी।
बहुत बड़ा आयोजन था वो।
हाँ, और कोई भी सोच सकता था कि वो मंदिर मुख्य रूप से बलियों और कर्मकांडों की जगह है, लेकिन सुलेमान ने अपने उद्घाटन भाषण में बलियों पर नहीं बल्कि इस बात पर जोर दिया कि वो स्थान प्रार्थना के लिए है।
क्योंकि प्रार्थना संचार का प्रतीक है, संवाद का प्रतीक है। ईश्वर एक ऐसा संबंध चाहते हैं जो जीवंत हो, जहां बातचीत हो। कर्मकांड अपनी जगह है, लेकिन अगर वे सिर्फ एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाए और उनमें से संवाद गायब हो जाए
तो वे बेजान हो जाते हैं।
बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। और दुर्भाग्य से यशाया के समय में समाज के नेता और आम लोग ठीक यही गलती कर रहे थे,
और उनकी इस गलती को ग्रंथ में बहुत ही तीखे शब्दों में बयां किया गया है। मैंने पढ़ा, उन नेताओं को अंधे चौकीदार और लालची कुत्ते कहा गया है जो कभी भौंकते नहीं।
हाँ, बहुत ही कठोर शब्द हैं।
मतलब वे समाज को खतरे से आगाह करने का अपना काम ही नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर मंदिर के दरवाजे सभी के लिए खुल रहे थे और इतना बड़ा आध्यात्मिक बदलाव आ रहा था तो समाज के अंदर इतनी सड़ान कैसे पैदा हो गई?
इसके पीछे एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कारण था।
वो क्या?
मुक्ति मिली तो उनके अंदर एक बहुत ही अजीब तरह का अहंकार पैदा हो गया।
अच्छा, मुक्ति मिलने पर अहंकार?
हाँ, उन्हें लगने लगा कि वे अब्राहम के वंशज हैं, इसलिए वो अजय हैं। उन्होंने सोचा, चूंकि ईश्वर ने हमें बचा लिया है, इसका मतलब है कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही हमारी सुरक्षा की गारंटी है।
ओहो, मतलब उन्होंने उसे अपना हक मान लिया।
बिल्कुल। और इस मानसिकता ने उनकी नैतिकता को पूरी तरह से खोखला कर दिया। उन्हें लगा कि अब वे कैसा भी व्यवहार करें, गरीबों का शोषण करें या भ्रष्टाचार करें, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
अगर इसे आज के संदर्भ में देखा जाए ना, तो ये मानसिकता कुछ ऐसी है जैसे लोगों ने ईश्वर को एक वेंडिंग मशीन समझ लिया हो।
वेंडिंग मशीन, ये बहुत अच्छा उदाहरण है।
हाँ, मतलब आप मशीन के पास जाते हैं, अपना जन्म सिद्ध अधिकार या कोई छोटा मोटा धार्मिक कर्मकांड मशीन में सिक्के की तरह डालते हैं।
हाँ,
और फिर अपनी पसंद का आशीर्वाद या सुरक्षा बाहर निकाल लेते हैं
खटाक से।
बिल्कुल यही हो रहा था।
इस पूरी प्रक्रिया में आपका दिल कैसा है? आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप सच में ईश्वर से प्रेम करते? इन बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता।
एकदम सही।
और इस वेंडिंग मशीन वाली मानसिकता को ही डॉक्टर ओसवाल्ट बुतपरस्ती कहते हैं।
बुतपरस्ती? लेकिन वो तो मूर्तियां नहीं पूज रहे थे ना?
यही तो समझना बहुत जरूरी है कि बुतपरस्ती का असली मतलब क्या है। आज हम सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मूर्तियों के सामने नहीं झुक रहा है तो वो बुतपरस्त नहीं है।
हाँ, आम धारणा तो यही है।
लेकिन वैचारिक रूप से बुतपरस्ती का मतलब मूर्तियों की पूजा करना नहीं है। इसका मतलब है ईश्वर को अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित करने की कोशिश करना,
मैनिपुलेट करना।
अरे बाप रे, ये बहुत ही गहरी बात है।
है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए उपवास कर रहा है ताकि उसका प्रमोशन हो जाए।
बिल्कुल।
या इसलिए भारी दान दे रहा है ताकि बदले में ईश्वर उसे आर्थिक लाभ दे, तो वो इंसान भले ही किसी भी धर्म का हो, उसकी मानसिकता पूरी तरह से एक बुतप्रस्त वाली है।
एकदम सही।
क्योंकि उसका लक्ष्य ईश्वर से प्रेम करना नहीं है बल्कि ईश्वर का इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाना है।
बिल्कुल। वो इंसान धर्म का पालन नहीं कर रहा, वो धर्म के साथ एक ट्रांजैक्शन कर रहा है।
हाँ।
एक लेन देन।
हाँ।
एक बिजनेस डील की तरह।
हाँ।
और ये लेन देन वाला धर्म कभी भी सच्ची शांति नहीं दे सकता। डॉक्टर ओसवाल स्पष्ट करते हैं कि सच्ची आस्था इस ट्रांजैक्शन से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि सच्ची आस्था अनुग्रह पर आधारित होती है।
अनुग्रह यानी ग्रेस।
हाँ।
तो अनुग्रह की अवधारणा इस ट्रांजैक्शन वाली मानसिकता को कैसे तोड़ती है? मतलब अगर इंसान अच्छे कर्म कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है?
बुराई कर्मों में नहीं है, उनके पीछे की प्रेरणा में है।
अच्छा।
देखिए, ट्रांजैक्शन वाली मानसिकता कहती है, मैं अच्छे काम करूंगा ताकि ईश्वर मुझे बचा ले। ये एक शर्त है
कि मैं ये दूंगा तो तुम वो दोगे।
हाँ, लेकिन अनुग्रह की मानसिकता बिल्कुल उल्टी है। वो कहती है, ईश्वर ने मुझ पर पहले ही अनुग्रह कर दिया है, मुझे बिना मेरी योग्यता के बचा लिया है। इसलिए उस असीम प्रेम के जवाब में अब मैं अच्छे कर्म करूंगा। अनुग्रह में अच्छे कर्म उद्धार पाने का साधन नहीं होते, बल्कि वे उस उद्धार का एक स्वाभाविक और तार्किक परिणाम होते हैं।
ये तो पूरे नजरिए को ही बदल देता है।
बिल्कुल बदल देता है।
इसका मतलब है कि व्यवहार बहुत मायने रखता है, लेकिन उसकी जड़ें डर या लालच में नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता में होनी चाहिए।
हाँ, लेकिन यहाँ डॉक्टर ऑसवाल्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं कि केवल प्रेम की बात करना भी खतरनाक हो सकता है।
केवल प्रेम की बात करना खतरनाक कैसे हो सकता है?
क्योंकि प्यार और ईश्वर के भय के बीच एक संतुलन होना चाहिए।
ईश्वर का भय, अक्सर लोग इस शब्द को सुनकर नरक की आग या किसी भयानक सजा के डर से जोड़ लेते हैं। क्या ये सच में वही डर है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ भय का मतलब आतंक या खौफ नहीं है।
तो फिर क्या है?
इसका मतलब है ईश्वर की महानता के प्रति एक गहरा सम्मान और उन्हें निराश न करने की इच्छा।
ओहो, एक रिस्पेक्ट वाली बात।
हाँ, सोचिए अगर किसी रिश्ते में केवल प्रेम हो और सम्मान न हो तो वो प्रेम बहुत जल्द एक भावुकता में बदल जाता है।
सेंटिमेंटलिज्म में।
बिल्कुल, इंसान सोचने लगता है ईश्वर तो प्यार का सागर है, मैं चाहे जो भी बुरा काम करूं वो मुझे माफ कर ही देगा।
मतलब फिर तो वो कुछ भी करने के लिए आजाद हो गया।
हाँ, और ये भावुकता इंसान को उसी भ्रष्टाचार की तरफ ले जाती है जिसकी आलोचना यशाया ग्रंथ में की गई है।
यही कारण है कि ईश्वर उन्हें एक व्यभिचारिणी की संतान कहते हैं।
बहुत ही कड़े शब्द।
क्योंकि वे बाहर से धार्मिक होने का नाटक करते थे, लेकिन अंदर से दुनिया की हर बुराई के साथ समझौता कर चुके थे। और शायद यही वो जगह है जहां इंसान की आस्था सबसे ज्यादा डगमगाती है।
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि जब लोग उस वेंडिंग मशीन वाले धर्म को मानते हैं और वे लगातार सिक्के डालते रहते हैं,
हाँ,
मतलब अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख आता है, तो उन्हें लगता है कि मशीन टूट गई है।
अरे वाह, ये बहुत ही सटीक बात कही आपने,
है ना? यशाया 57 में एक बहुत ही गहरा मुद्दा उठाया गया है, धर्मी लोगों की मृत्यु। जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो लोग ईश्वर को अन्यायपूर्ण मानने लगते हैं।
दुख का ये विरोधाभास हर युग में इंसान को परेशान करता रहा है।
बिल्कुल।
जब कोई बहुत ही नेक और धर्मी व्यक्ति युवावस्था में या अचानक मर जाता है तो समाज उसे एक बहुत बड़ी त्रासदी मानता है। लोग पूछते हैं कि ईश्वर ने इसके साथ ऐसा क्यों किया।
हाँ, हर कोई यही पूछता है।
लेकिन अध्याय 57 एक ऐसा दृष्टिकोण पेश करता है जो हमारी सोच की सीमाओं को उजागर कर देता है।
वो कैसे?
ग्रंथ कहता है कि जब धर्मी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हो सकता है कि ईश्वर असल में उसे भविष्य में आने वाली किसी बहुत बड़ी विपत्ति, बुराई या कष्ट से बचा रहे हों।
ये विचार ये सच में झकझोर देने वाला है
ना?
हम इंसान मृत्यु को हमेशा एक अंतिम हार या सजा के रूप में देखते हैं। हम सोचते हैं कि लंबी उम्र ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
हमारी सोच बहुत सीमित है।
लेकिन ग्रंथ कह रहा है कि जो चीज हमारी सीमित नजर में एक भयानक अंत लगती है, वो एक बहुत बड़ा बचाव हो सकती है। क्योंकि हम भविष्य नहीं देख सकते, हम नहीं जानते कि उस इंसान को आगे क्या सहना पड़ता।
बिल्कुल, हम केवल एक छोटे से हिस्से को देखते हैं जबकि ईश्वर पूरी तस्वीर देखते हैं। और इसी संदर्भ में अध्याय 57 एक और बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास सामने रखता है।
वो क्या है?
ग्रंथ कहता है कि वह ईश्वर जो सबसे ऊंचा है, जो अनंत काल में वास करता है और जिसका नाम अत्यंत पवित्र है,
हाँ,
वह अहंकारी और खुद को महान समझने वाले लोगों के साथ नहीं रहता। इसके बजाय वह उन लोगों के साथ रहता है जिनका हृदय नम्र है और जो पछतापी हैं।
इस बात पर हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए।
बिल्कुल।
मतलब जब हम मानते हैं कि ईश्वर सबसे ऊंचे स्थान पर है, तो तार्किक रूप से उसे उन लोगों के पास होना चाहिए जो समाज में ऊंचे हैं,
जो सफल हैं, ताकतवर हैं।
हाँ, अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो हमारी पूरी जिंदगी खुद को ऊंचा दिखाने में निकल जाती है। सोशल मीडिया पर अपनी सफलताओं का बखान करना, हर जगह खुद को सबसे बेहतर साबित करना, कभी अपनी गलती ना मानना,
यही तो आजकल का चलन है।
लेकिन ग्रंथ कह रहा है कि जिस ईश्वर को हम पाना चाहते हैं वो उस ऊंचाई पर है ही नहीं जहां हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
एकदम सही।
वो तो सबसे नीचे, सबसे नम्र लोगों के बीच बैठा है। ये तो सफलता और महानता की हमारी पूरी परिभाषा को ही सिर के बल खड़ा कर देता है।
ये आज के समय के लिए सबसे सटीक विश्लेषण है। सच तो ये है कि अहंकार ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ी और मजबूत दीवार है। जब तक कोई इंसान ये सोचता है कि वो अपने जीवन का खुद मालिक है, कि उसे किसी की जरूरत नहीं है और वो अपनी योग्यता के बल पर सब कुछ हासिल कर सकता है, तब तक वो ईश्वर के अनुग्रह को स्वीकार कर ही नहीं सकता,
क्योंकि उसके हाथ तो पहले से भरे हुए हैं।
बिल्कुल, अनुग्रह का उपहार पाने के लिए हाथों का खाली होना जरूरी है, लेकिन अहंकार इंसान के हाथों को खुद की तारीफों से भर देता है।
डॉक्टर ओसवर्ड ने अहंकार की इस पकड़ को समझाने के लिए जो आंकड़ा दिया था ना, वो बहुत डरावना था।
आप उस डेथ बेड वाले आंकड़े की बात कर रहे हैं?
हाँ, उन्होंने कहा कि मृत्युशैया पर, यानी जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षणों में, हृदय परिवर्तन या सच्चे पश्चाताप के मामले केवल 1% होते हैं, सिर्फ 1%।
और इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत ही स्पष्ट और निर्मम है।
वो कैसे?
किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी केवल अपने अहंकार को पोषित करने में बिता दी। उसने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया, खुद को सबसे ऊपर रखा। अब जब जीवन का अंत सामने है, तो अचानक से उस अहंकार को छोड़ देना, ये स्वीकार करना कि मैं गलत था या मैं असहाय हूँ, उसके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है,
क्योंकि इसने जिंदगी भर वही तो किया है।
हाँ, इतने सालों का बनाया हुआ वो झूठा आवरण इतनी आसानी से नहीं टूटता।
और शायद यही वजह है कि ग्रंथ ऐसे दुष्ट लोगों की तुलना, मतलब जो ईश्वर के बिना केवल अपने अहंकार में जीते हैं, उनकी तुलना एक अशांत समुद्र से करता है।
हाँ, एक अशांत समुद्र।
समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होती, वे हमेशा कीचड़ और गंदगी उछालती रहती हैं। ऐसे लोगों को कभी भी सच्ची शांति नहीं मिलती।
और इस सच्ची शांति को हिब्रू भाषा में शालोम कहा जाता है।
शालोम?
हाँ, शालोम एक बहुत ही गहरा शब्द है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके जीवन में कोई लड़ाई या युद्ध नहीं है।
तो इसका पूरा मतलब क्या है?
शालोम का अर्थ है संपूर्णता, आंतरिक सद्भाव और एक ऐसी गहरी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती।
एक मिनट, संपूर्णता?
हाँ।
अगर हम इसे उस चर्चा से जुड़े जो हमने शुरुआत में वो किन्नरों और शारीरिक पूर्णता के बारे में की थी, तो क्या ये उसी विचार का आध्यात्मिक रूप है?
अरे वाह, आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं।
मतलब पहले ईश्वर ने शारीरिक पूर्णता के जरिए लोगों को सिखाया, और अब अध्याय 57 में वो बता रहे हैं कि असली पूर्णता यानी शलोम आध्यात्मिक है, जो केवल अहंकार छोड़ने से मिलती है।
ये एक बहुत ही शानदार संबंध है जो आपने जोड़ा है। बिल्कुल, शलोम वही आध्यात्मिक पूर्णता है।
सब कुछ कैसे आपस में जुड़ा हुआ है,
है ना? ग्रंथ स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति ईश्वर के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करता, जो अपने अहंकार में डूबा रहता है, उसके लिए कोई शलोम नहीं है,
कोई शांति नहीं है।
हाँ, वो हमेशा अधूरा और अशांत ही रहेगा। लेकिन यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जब ईश्वर ऐसे लोगों को चेतावनी देते हैं, तो उनका उद्देश्य कभी भी विनाश नहीं होता।
तो अगर उद्देश्य विनाश नहीं है, तो उन कठोर चेतावनियों का क्या मतलब है जो अक्सर इन ग्रंथों में पाई जाती हैं?
चेतावनियाँ हमेशा बचाव के लिए होती हैं।
बचाव के लिए?
हाँ, ईश्वर का अंतिम उद्देश्य हमेशा इंसान की शिफा और उसकी पुनर्स्थापना होता है, हीलिंग होता है।
अच्छा।
चेतावनी इसलिए दी जाती है ताकि इंसान उस अशांत समुद्र से बाहर निकल आए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज को उसकी खराब आदतों के लिए बहुत कठोरता से डांटता है।
हाँ, कि भाई मीठा खाना बंद करो वरना जान चली जाएगी।
बिल्कुल, डॉक्टर उसे मारना नहीं चाहता, वो उसे बचाना चाहता है।
सही बात है।
लेकिन अगर मरीज अपने अहंकार में अड़ा रहे, वो शिफा को ही नकार दे और इलाज करवाने से ही मना कर दे, तो फिर कोई उसे कैसे ठीक कर सकता है?
तो गलती मरीज की है, डॉक्टर की नहीं। आज की इस पूरी चर्चा ने सच में कई परतों को खोला है।
मुझे भी ऐसा ही लगता है।
हमने एक चियासम नाम की साहित्यिक संरचना से शुरुआत की थी, जिसने हमें ये दिखाया कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ केवल कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
बल्कि दुनिया के सभी लोगों को एक साथ लाने का एक विस्तृत खाका है।
हमने ये समझा कि कैसे प्राचीन काल में बाहरी शारीरिक पूर्णता के नियमों ने एक एक ट्रेनिंग व्हील की तरह काम किया।
हाँ, ताकि इंसानियत धीरे धीरे आंतरिक और आध्यात्मिक सच्चाई के मार्ग को समझ सके।
और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमने उस लेन देन वाले धर्म के मनोवैज्ञानिक जाल को पहचाना।
वो वेंडिंग मशीन वाली मानसिकता?
हाँ।
वो बुतपरस्त मानसिकता जो आज भी हमारे समाज में बहुत गहराई तक व्याप्त है, जहाँ लोग ईश्वर को अपनी इच्छा पूर्ति का एक साधन मान लेते हैं और अनुग्रह की उस असीम गहराई को पूरी तरह भूल जाते हैं, एक अशांत समुद्र बनाकर छोड़ देता है।
सही कहा, सच्ची नम्रता ही वो एकमात्र स्थान है जहां वो सर्वोच्च शक्ति निवास करती है,
और वही वो जगह है जहां इंसान को असली शालोम मिलता है।
और यही यशाया के इन अध्यायों का सबसे शक्तिशाली संदेश है।
बिल्कुल,
कि अनुग्रह, शांति और आध्यात्मिक पूर्णता कोई ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें कमाया जा सके या जिनका कोई मोल चुकाया जा सके।
ये ऐसे उपहार है जिन्हें केवल खुले, नम्र और खाली हाथों से ही स्वीकार किया जा सकता है।
इस पूरी यात्रा को समेटते हुए एक ऐसा विचार है जो इन सभी अध्यायों और डॉक्टर ऑसवर्ल्ड के पूरे विश्लेषण के मूल में गहराई से छिपा हुआ है, जिस पर आगे विचार करना बहुत दिलचस्प होगा।
वो क्या है?
क्या इंसान को सच्ची शांति या शालोम तब तक मिल ही नहीं सकती जब तक वो इस बात को पूरी तरह स्वीकार न कर ले कि इस जीवन पर उसका अपना कोई नियंत्रण नहीं है?
ये बहुत गहरा सवाल है।
आज की दुनिया हर पल यही सिखाती है कि लड़ते रहो, सब कुछ अपने हाथों में रखो, अपनी मुट्ठी भींच कर रखो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे इंसान हार मानना या पूर्ण समर्पण कहता है, असल में वही उसकी सबसे बड़ी और अंतिम आजादी हो?
बिल्कुल,
उस 6 साल के बच्चे की तरह जिसने उस कैसेट को सुनते हुए अपनी सारी पूर्व धारणाएं एक तरफ रख दी थीं और सिर्फ उस संदेश की गहराई में खो गया था।
हाँ, बिना किसी अहंकार के।
शायद हम सबको भी अपने उस वेंडिंग मशीन वाले धर्म के शोर को बंद करके आत्मसमर्पण की उस सच्ची और गहरी शांति को महसूस करने की जरूरत है।
ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर हर किसी को बहुत गहराई से आत्ममंथन करना चाहिए।